HIV. वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरुणो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना न मां चरणन्ति अधलक्ष्ये चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं मैं सर्वप्रथम अपने परमारातम गुरु पाद पद्म ओम विष्णु भाग श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा दंड प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु वासिष्ठ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के भी चरणों में अपनी असंख्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परसों के बाद में आज कृष्ण की मधुर लीलाओं का कुछ वर्णन करूंगा। आज अंतिम दिन भी इस ट्रिप में है। भगवान करेंगे और भी लीलाओं का सुनने का अवसर आप लोगों को मिले, जिससे कि आप लोग समझ सके अच्छी तरह से, कोई भ्रांति इत्यादि न रह जाए। एक व्यक्ति ने मुझसे भी प्रश्न किया कि हम लोग ये जानना चाहते हैं, कृष्ण लीला में दुर्गा जी, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी इत्यादि की क्या स्थिति है। हम लोग तो दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं, काली जी की पूजा करते आ रहे हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते आ रहे हैं, किंतु भागवत में तो ये लिखा नहीं दुर्गा पूजा इत्यादि की बात। तो इस विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसके लिए श्रीमद् भागवत में ही जो दिए गए हैं उसी के आधार पर आप लोगों को मैं बतला रहा हूं। कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई भगवान नहीं है, पहले ये समझो। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। वही राम, वही निशिंग देव, वही विभिन्न विभिन्न अवतारों के रूप में कृष्ण ही आते हैं। कभी अपना नाम राम रख लेते हैं, कभी निशिंग रखते हैं, इस प्रकार से वे लय करते हैं जगत के कल्याण के। शंकर जी उनके प्रियतम भक्तों में से एक हैं और शंकर जी की शक्ति दुर्गा है, कहा जाता है तो शंकर की, किंतु ये कृष्ण की एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? परमात्मा वैकुंठ राज्य में गोलोक वृंदावन में एकमात्र क्यों हो जाता है? अच्छा, सबकी जरूरत है एक आदमी उठो। ठीक है, सभी जैसा क्या हो गया 50 एकमात्र परम पुरुष है। वे अद्वितीय हैं, उनकी शक्ति भी एक ही है, 2, 10, 20 नहीं है। और शक्ति का नाम तरंगा शक्ति, पराशक्ति, बहुत से उसके नाम है। और वो अंतरंगा शक्ति और कोई नहीं, राधिका जी हैं। गायत्री मंत्र में भी वो ओम जो है उसमें कृष्ण जी हैं, और उस मंत्र का आराध्य देवता है राधा जी, गायत्री। इसलिए एक ही शक्ति है, पराश शक्ति, एक शक्ति विभुधरी वसुंधरी, बहुत रूपों में सुनी उनका नाम है, पर जगत में उन्हीं का नाम श्रीमती राधिका अथवा पराशक्ति अंतरंगा शक्ति। और इस जगत में वही राधा जी जगत का सृजन करने के लिए और दुष्ट जीवों का को दंड देने के लिए दुर्गा बन जाती है, दुर्ग किला। दुर्ग के समान है, किले के समान। हम लोग जैसे जीवों को दंड देने के लिए ये बना है। इस जेल खाने में कोई सुख चाहता है तो वो पागल है। ये तो संशोधन करने के लिए बनाया गया, और दुर्गा जी इसके रक्षक हैं। ये दुर्गा जी और कोई नहीं, कृष्ण की एक प्रकार से प्रकाश है, छाया शक्ति है। जब जीवों का दंड होता है तो राधा जी ही जगत का सृजन करने के लिए, दंड देने के लिए महामाया, दुर्गा, काली, विंध्याचरी इत्यादि बहुत से उनके नाम है, सिंहवाहिनी दुर्गा इत्यादि नाम है। और जब जीव परमात्मा में आते हैं तो उनको कृपा करने के लिए जोग माया बनकर उनको भगवान से मिलन करा देती है। जो लोग इस तथ्य को नहीं जानते हैं वो शंकर जी को स्वयं भगवान और दुर्गा जी को स्वयं भगवती और दुर्गा जी से ही ब्रह्मा विष्णु सबका जन्म मानते हैं, किंतु राधा जी मूल हैं। दुर्गा जी के रूप में वैकुंठ में दुर्गा का निवास नहीं है, वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में अयोध्या इत्यादि में दुर्गा जी नहीं है, इस जगत में वही अष्टभुजा के रूप में है। में दर्शन करते हैं। यदि दुर्गा जी ही संसार की कर्त्री हैं, बनाने वाली हैं, तो कुछ शंकाएं आती हैं। क्या उस दुर्गा जी का भजन करने से सब प्रकार से मंगल होता है? किंतु रावण उनकी उपास्या थी, कुल देवी थी, रावण ने उनकी उपासना की, उनकी आराधना की, उनकी पूजा की, किंतु पूजा के बदले उसके वंश का ध्वंस कर दिया। क्यों? सोचने विचारने की बात है, क्यों ध्वंस कर दिया? अरे पूजा से तो समृद्धि होनी चाहिए, कल्याण होना चाहिए, तो वो तो 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती सबके साथ में ध्वंस हो गया, उसके वंश में दीप देने के लिए भी कोई नहीं बचा विभीषण के अतिरिक्त। क्यों? हम देखते हैं हिरण्यकश्यप भी दुर्गा जी की पूजा करता था, दिन में रात में नहीं मरेगा, किसी तरह से नहीं मरेगा, और फिर 1 सेकंड के अंतर्गत में विष्णु ने उसका काम शेष कर दिया। क्यों? ठहर जाओ, घबराओ मत। कांस दुर्योधन वे सभी लोग शंकर जी की और दुर्गा जी की पूजा करते थे। कंस वहां पर रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, गोकर्णेश्वर महादेव इत्यादि बहुत से वहां पर महादेव हैं, उनकी पूजा करते, बिना पूजे कुछ नहीं करता था, किंतु क्या वो उसे भाई बंधु सब लोगों के साथ में कृष्ण ने विष्णु कृष्ण के रूप में उसे मार डाला। तो क्यों नहीं मरना चाहिए था? विष्णु के किसी भी भक्त को शंकर जी और दुर्गा जी ने कभी नहीं मारा, किंतु ये दुर्गा जी के भक्तों को और शंकर जी के भक्तों को विष्णु किसी न किसी रूप में मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? एक बात है, विष्णु के भक्त लोग भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, और शंकर के जो ऐसे और दुर्गा जी की जो उपासना करते हैं वो सीता जी का भी धारण कर लेते हैं। सीता जी हमारे साथ में रहेगी, हमको अपनी पत्नी बना करके रखेंगे, बड़ी सुंदरी है, मुक्त होकर इसलिए मर जाते हैं। कंस या किंतु कृष्ण को मारने के लिए चेष्टा की, उसका शक्ति को हरण कर ले। दुर्गा जी कहती हैं, जो मैं तो उनकी शक्ति को हरण कैसे करेगा, बेटा हमारा भक्त का है, बनता है, अभी तो तुम साधारण अवस्था में, तुम कहता है यो मैं आपका दास हूं, हे माँ, माता जी हमारी रक्षा करते करो, दुर्गा जी आप हवा की हैं, आप मेरी रक्षा करें। और फिर थोड़े दिनों के बाद में कहते हैं, ये शिवोहम, शिवोहम माने क्या, मैं शिव हूं, और मैं शिव गया तो भवानी उनकी क्या लगेगी, और ये सब बदमाश हैं, नंबर छठे पे बदमाश, इसलिए उनका ध्वंस कर देते हैं। इसलिए खबरदार, यदि दुर्गा जी का पूजन करना है तो पूजो, कोई आपत्ति नहीं है, भगवान की शक्ति मानकर राधा जी का प्रकाश मानकर उनको भोग, पहले कृष्ण को भोग दे करके, राम को भोग दे करके, और तब उनकी पूजा करो उसी से, चरणामृत से या उनके प्रसाद दे करके, पहले हम चढ़ाया कृष्ण को या रामचंद्र जी को, और वही प्रसाद वही चरणामृत से वो दुर्गा जी की पूजा करो, शंकर वो पूजा ले। ये पूजा आज भी भुवनेश्वर महालिंगराज है ऐसा ही होता है। पहले अनंत वासुदेव वहां पर एक ठाकुर जी हैं भगवान कृष्ण, पहले उनकी पूजा होती है, चरणामृत होता है, तो उसको ले जाते हैं और लिंगराज में उसी चरणामृत से उनको स्नान कराते हैं और उनका प्रसाद भोग लग जाने के बाद में भुवनेश्वर लिंगराज को लगता है हम लोग भी लेते हैं, कि तो और कहीं शंकर जी का हम नहीं लेते। अभी भी यदि अब कुछ नियम बदला है, अब चढ़ाते हैं, अब नहीं लेते हैं, अब वहां पर अनंत वासुदेव का हम लोग भोग लें, इसलिए ये सब समझेंगे। इंद्र को भी कुछ अभिमान हुआ, जब मैं देव सबसे बड़ा, अभिमान तोड़ दिया ना, अभिमान तोड़ दिया इंद्र का, वरुण का, यम का, ब्रह्मा जी का, सब अभिमान तोड़ा कृष्ण लीला, एक एक लीलाओं के द्वारा कामदेव को भी, रासलीला के द्वारा कामदेव को जीता। कैसे? एकांत रात्रि चंद्र पूर्णिमा का चांद, जमुना जी का किनारा, बहुत बेली चमेली फूलों से वृंदावन भरा हुआ, सुगंधित और कोई नहीं, और लाखों ज्योतियां गोपियां कितनी सुंदरी, और कृष्ण के साथ में रास कर रही हैं, उनके अंगों पर अपना अंग हाथ दे रही हैं, आलिंगन कर रही हैं, कृष्ण निर्विकार है, उनको छोड़कर के अंतर ध्यान हो गए, हाथ काश करने लगे, ये काम देव पर विजय कृष्ण इस रूप में समझो, कृष्ण हमारे जैसे जैसे। फिर गोपियां मिल मिलाने लग गई, फिर दर्शन दिया। इस तरह से ये कृष्ण लीला के भीतर में बहुत सी गंभीर तत्व हैं, इसको जो जानेगा वो तो उनकी पूजा करे। सब जो मन मंदिर, हम लोग ये चाहते हैं मंदिर बनाने की अपेक्षा हमारा मन मंदिर बनाया जाए, और मंदिर पे जैसे झाड़ू पोछा इत्यादि लगाते हैं, साफ करते हैं, वैसे मन को निर्मल बनाया जाए इस मंदिर को। मंदिर लाख बनाया और यदि मन निर्मल नहीं हुआ, इसमें काम है, क्रोध है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, अर्थ का लोभ है, सांसारिक लोभ है, तो फिर क्या हुआ? हुआ क्या? मंदिर बहुत बनाए और कितने ध्वंस हो गए। ये मन मंदिर यदि वैसा बन गया तो ध्वंस नहीं होगा। आज तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की, सुखदेव गोस्वामी की, नारद गोस्वामी की सर्वत्र पूजा किस लिए होती है? वो मंदिर ढहने वाला गिरने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो इसी पर जोर देता हूं कि आप लोग सभी अपने मंदिर को बनाए, और सभी मंदिर में ऐसा भी ऐसा ही होना चाहिए, बिना किसी कारण के सबका प्रवेश हो, वहां पर निरंतर हरि कथा हो, जो आए उनके लिए सबके लिए दरवाजा खुला है, सबका आदर हो, संत पुरुषों का आदर हो। किंतु वो कथाएं नहीं होनी चाहिए उस मंदिर में जो शंकर जी भगवान है, दुर्गा जी भगवान है। इस पर तो रोक नहीं, बड़ी सिगरेट धुआं उड़ाता हुआ कोई आ जाए, पान चिबाता हुआ आ जाए, ये सबका मना रहा, जूता लगा करके उनके सामने आ जाए, इसका ये तो मना। इसलिए मंदिर का भी प्रारंभ हरी कथा है। इस तरह से मैंने संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब हम लोग अपने विषय में आ रहे हैं। कोई भी प्रश्न होगा तो आप लोग हरी कथा के बाद में कर सकते हैं, और जहां तक होगा उसका उत्तर मैं देने की चेष्टा करूंगा। अब हम लोग भागवत के एक कथा पर और आते हैं। सब कथाओं को नहीं सुना सका, आना सुना सकने का समय थोड़ा सा मैं सुना रहा हूं। एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में
गोचारण के लिए आए वृंदावन में छठी करा स्थान है जहां पर की गोप लोगों का निवास था। छठी करा से पास ही में एक अशोक कानन है, अशोक के वृक्ष है। आप लोग जानते हैं अशोक वृक्ष में फल और फूल नहीं लगते, पेड़ों की छाया रहती है, बहुत लंबे हो जाते हैं, अधिक चौड़ा भी नहीं होता। तो आज बाई चांस चले गए उसी अशोक वन में जो मथुरा और वृंदावन के बीच में पड़ता है। वहां पर कोई जमुना के किनारे फल फूल के वृक्ष नहीं, अशोक के पेड़ ही केवल है। जब वहां गए तो यशोदा मैया प्रतिदिन दोपहर का भोजन कलेवा उसी स्थान में भेजती थी जहां पर वो आज जाने वाले हैं। पहले से निश्चित हो जाता था, कृष्ण बतला देते थे आज मैं इस जंगल में, ईश वन में, भांडीर वन में, कभी बेल वन में, कहीं उस वन में, ताल वन में, कुमुद वन में, बहुला वन में मैं जाऊंगा। वहीं पर ये मैया छाछ उनके लिए छाछ दे दिया और कृष्ण बच्चों के साथ में दोपहर को गैया चरा विश्राम करती थी दोपहर में और वो लोग लेते। आए तो वो छाछ दूसरी जगह पहुंच गया और ये दूसरी जगह पहुंचा है यहाँ अशोक कानन। बड़ी भूख लगी दोपहर में, ग्वाल बालों को बड़ी भूख लगी, कृष्ण और बलदेव जी को भी भूख लगी। इन बच्चों ने उस समय ब्रह्म नहीं रहते, उनको भूख प्यास सब कुछ लगती है। तो वो जब बच्चों को भूख लगी उन्होंने उनसे निवेदन किया, हो प्रभु कृष्ण और बलदेव जी आज तो हमें बड़ी भूख लगी है, ये असुर नहीं मानता, आपने सब असुरों का ध्वंस किया, इस असुर का ध्वंस नहीं किया और ये दूसरे ये हमारे पेट में ही है ये असुर, इसलिए आप किसी प्रकार से इस दानों से हमारी रक्षा करें। उस समय में कृष्ण और बलदेव जी बोले, विशेष करके कृष्ण ने, ठीक है एक बात करो, पासी में जमुना नदी बह रही है, उसी जगह में जमुना के किनारे कुछ मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं कैसा, वो कर रहे हैं स्वर्ग जाने के, और उस यज्ञ का नाम अंगीरस है और सब यज्ञों में यज्ञ का संकल्प करके जब तक कि हवन कार्य पूरा नहीं हो जाता है किसी को नहीं दिया जा सकता है, न अपने खाता है न दूसरों को खिलाता है, और अंगीरस में यज्ञ में दूसरों को दान दे सकते हैं, खिला सकते हैं, ऐसी विधि है और यज्ञों में नहीं। कृष्ण ने कहा ये तुम्हें भूख लगी है, एक बात करो, जाकर के ये ब्राह्मण लोग जब ये यज्ञ कर रहे हैं बोलो इनसे, उनको पहले जाकर के दंडवत प्रणाम करना और कहना कि आपके निकट ही अशोक वन में कृष्ण और बलदेव जी आए हैं गोचारण के लिए और उनको भूख लगी है, आप थोड़ा सा अन्न दीजिए जिससे कि उनकी भूख मिट जाए, तुम चिंता मत करो जाओ, अरे हम तो ग्वाल बाल हैं, भिक्षा करने का हमें अधिकार है। अच्छा ठीक है, कृष्ण के गाने से वे लोग यज्ञशाला में गए और ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने देख करके भी नहीं देखा, जब प्रतीक्षा करते रहे जब वो कुछ पूछेंगे किस लिए आए हो, जब नहीं पूछा तो स्वयं बोले, हे ब्राह्मण देवता आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, और पास ही कृष्ण और बलदेव यहाँ पर पधारे हैं गोचारण के लिए, भूख लगी है सब लोगों को। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ उनसे मांग लाओ, वह तुम्हें भिक्षा के रूप में अन्न दे देंगे, और फिर लाना, फिर भोजन करना। तो आप कृपा करके हमें कुछ अन्न दीजिए। अन्न माने क्या, यहाँ रोटी है, दाल है, सब्जी है, अन्न है, तरह तरह की चीजें हैं, भोग लगता है उसमें, तो आप लोग कुछ दीजिए। एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार कहा, किंतु उन लोगों ने सुन करके भी नहीं सुना, उनके तरफ में देखा ही नहीं, तो बड़े लज्जित हुए। और फिर उनको प्रणाम करके लौट आया, कृष्ण से बोले, प्रभु उन लोगों से हमने अन्न माना तो वो तो हमारे तरफ में देखा भी नहीं, इसलिए अब क्या किया जाए, अब क्या उपाय किया जाए, अब तो कोई उपाय नहीं। कृष्ण ने कहा एक बात और करो, अरे बार बार भिक्षा मांगने में हम लोगों को संकोच नहीं करना, मान अपमान हम भिक्षुकों का नहीं होता। एक जगह जाओगे नहीं देंगे, एक जगह जाओगे पूजा करेंगे लोग, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो सब लोग पूजा करते हैं, और कहीं जाते हैं तो अभिमान का घूंट भी कड़वा लेना पड़ता है, तो हम लोग उसे घबराते हैं, तो भिक्षुकों का क्या, तो तुम लोग जाओ उनकी पत्नियों को कहना तो, और जरूर तुम्हें भिक्षा दी। उन लोगों की हम लोग ऐसे अपमान नहीं सर, अच्छे हमारे भिक्षु जाओ। तो कृष्ण और बलदेव के कहने पर फिर गए, गांव में गए, भातरौल उस गांव का नाम पीछे पड़ा, भात दिया इसलिए भातरौल, उस गांव में गए। बड़ी किशोरी किशोरी स्त्रियां, बड़ी सुंदरी सुंदरी ब्राह्मण की पत्नियां, वो यज्ञशाला में जाने के लिए, अपने पतियों के लिए अन्न ले जाने के लिए प्रस्तुत थी, और जो भी सुना कृष्ण और बलदेव पासी में गोचारण करने के लिए आए हैं, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी और बड़ी संतुष्ट प्रसन्न हुई। वो अन्न का थाल सजाकर सारा और चल पड़ी कृष्ण के लिए, आज तो अहो भाग्य है, चलो। और उनके साथ ही चलते, एक सेकंड विलंब नहीं किया, भोजन पहले से सडरस भोजन तैयार था। तो वहां पर जब पहुंची, कृष्ण को देखा कृष्ण को उन्होंने देखा, जमुना को बने अशोक पल्लव मंडित, अशोक वृक्षों के द्वारा उसके पल्लवों से, नवीन नवीन कोमल पल्लवों से वन को बहुत सुशोभित था। उन्होंने जाकर के देखा, क्या बीच में कृष्ण बैठे हैं, चारों तरफ से सखा लोग बैठे हैं, पासी में ये सुंदर सुंदर गायें, जिन वो भी पास में चल रही है, और देख करके उनको मन ही मन में प्रणाम किया, और प्रणाम करके क्या किया, कैसे कृष्ण को, श्यामं हिरण्य परिधिं वन मल्यवरह धातु प्रवाल नटपेशम अनुप्रतं विनस्त हस्त पति मितरेण धुनान यज्ञं करणो पलाल कपोलम श्यामा, पढ़ाई श्यामल मेघ के समान कृष्ण का शरीर, और उसमें पीतांबर विद्युत के समान, बिजली के समान में बड़ी सुंदर लग रही है, सिर में मोर का मुकुट है, और धातु गैरिक धातुओं से कृष्ण के अंग और तरह तरह के कस्तूरी इत्यादि के द्वारा अत्यंत सुंदर तिलक लगा हुआ है। नटवेशम, नटवर जैसे होता है, नटवर बने क्या, जो रंगमंच पर नृत्य करने के लिए पहले आते हैं सजे सजाए रूप में, अथवा नटवर, बर नट, बर माने दुल्हा, काला कलूठा भी हो उसे हल्दी इत्यादि दे करके स्नान करा करके सुंदर सुंदर वस्त्र दे करके और सोने का मुकुट दे देते हैं, रंग बिरंगे अच्छे कपड़े पहना देते हैं,
सुंदर सोने का आभूषण लगा देते हैं और
शादी के लिए जाता है, तो एक असुंदर व्यक्ति भी परम सुंदर मनोहर लगता है। और कृष्ण तो स्वयं सुंदर, इसलिए ऐसे सुंदर कृष्ण को देखा। सखा लोग चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए हैं, अनुप्रतान से और उनके तुलसी की माला, बेली चमेली की माला पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मानो मधु के लोग से उन पर गुंजार कर रहे हैं। विन्यस्त हस्त इतरेण कुनाल, और एक हाथ से बंसी धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का पुष्प लेकर के और उनको हिला रहे हैं, माने गोपियों के मन को हिला रहे हैं अपने तरफ में आकर्षण करते हुए। कानों में एक कनेर का पुष्प है, दोनों में नहीं है, क्योंकि मतवाले हैं, कभी इधर रखते हैं कभी इधर रखते हैं। और कपोल मुखाभ्यासन, ओह उनके सुंदर कपोल हैं जिस पर कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, कौन कुंडल झंझर करते हुए यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और चुंबन कर रहे हैं कृष्ण के गाल, जिसको गोपियों के लिए यशोदा जी के लिए वो संभव उनका कपोलों का चुंबन कर रहे हैं। मुखाभ्यास और मुस्कुराते हुए हास, ऐसे कृष्ण को देखा और देखते ही शुद्ध बुद्ध उनकी खो गई और अपने आंखों से उस कृष्ण को भीतर ले गई और प्रचुर रूप में उनका आलिंगन किया, आंखों को बंद कर दिया, हम निकलने नहीं देंगे तुम्हें। अंतर प्रविश्य सूर चिरम परिरभ्य तापम, और उनका जो विरह का ताप था उसको, क्योंकि कृष्ण से मिल गए। इस प्रकार से वे एकदम मग्न हो गई। तास तथा तक्त सर्वाशा प्राप्त आत्मदिदृक्ष, घर से ये संकल्प लेकर के आई थी कि हम लोग जा रहे हैं कृष्ण के यहाँ, अपने पतियों के आदेश के विपरीत मना कर दिया, मत जाना नहीं तो घर में घुसने देंगे, ताक टांग तोड़ देंगे, खबरदार मत जाना। तो भी क्या करें, सब कुछ छोड़ करके, आशा छोड़ दिया घर में लौटना है, संपूर्ण से तैयार होकर के वहां पर चली। वहां पर जब गई तो कृष्ण ने उनको देखा, थाल उनके हाथों से ले लिए, कितनी यज्ञ पत्नियां होंगी हजारों, सबका थाल लेकर के सामने रख दिया और रख देकर के बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के समाचार पूछने लगे, क्या स्वागतम गो महाभाग अस्यतं करवाणि किम जन्नो दीक्षा प्राप्त उपपन्नम इदं वः, ओ तुम्हारा स्वागत है, आप लोगों का स्वागत है, पधारो, आप लोग पधारे, मैं आप लोगों के लिए क्या करूं, आदेश दीजिए। जन्नो दीक्षा प्राप्त उपपन्नम, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, बतलाओ क्या चाहिए, कैसे आपका स्वागत करूं। ननुद्धा मई कुशला स्वागत दर्शन अहेतु कव्यविता भक्ति जात्म प्रिय यथा, देखो जो सब प्रकार की आशाओं को छोड़ करके बंधु बांधव स्त्री पुत्र पिता भाई बंधु धर्म अधर्म सबका को जलांजलि दे करके हमारे चरणों की प्राप्ति के आशा से हमारे निकट जो आया है और अहेतु की बिना किसी कारण के तैल धारावत अविच्छिन्न गति से जैसे नदियां समुद्र की तरफ में जाती हैं स्वाभाविक रीति से, उसी प्रकार से जिसकी ऐसी गति है हमारे तरफ में हमारा भक्ति करते हैं उनको क्या मैं कभी छोड़ सकता हूं। प्राण बुद्धि मन आत्म दारा आपत्य स्त्री पुत्र सब कुछ जिन्होंने धन आदि सबको छोड़ करके जब संपर्क मेरे संपर्क से जो मेरे पास में चला आया उसको लौटने नहीं देता। इसलिए आपका स्वागत है, मैंने आपका ये अन्न और आपको भी मैंने ग्रहण का किया और उससे अधिक हमारा कोई प्रिय नहीं है, तुम्हारी हमारी प्रिय है। तत्जा देव जन्म पतयुद्धि जा, अब मैंने ग्रहण कर लिया है, अब आप लोग अपने पतियों को पास में जाकर के चिंतित करें। कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है, जो सपनों को छोड़ करके कृष्ण के चरणों में निस्वार्थ रूप से बिना किसी कारण से जाएगा, कृष्ण उसको नहीं छोड़ सकते, जो चाहेगा वही पूरा कर। किंतु कुछ लोग देखते हैं कि साधु ब्रह्मचारी होकर के आश्रमों में जाने से रुपया पैसा स्वार्थ बहुत मिलता है, इसलिए और घर में कोई पूछता नहीं है तो उसे अच्छा है कि साधु बन जाए और सभी चीजें मिल जाएंगी, घर बार सभी, और एक स्त्री नहीं हजारों स्त्रियां पास में फटकने लगे आने लग जाएंगी, इसलिए अच्छा है। किंतु कृष्ण तो सब समझते हैं, इनका हृदय समझा, इनको समझ करके ग्रहण किया, फिर बोले जी आप लोग पधारे। ठीक ऐसी ही बात भी ब्रज में बंसीबट में कृष्ण रात के समय पहुंचे, पूर्ण चंद्र खिल रहा था, उसकी लाल लाल किरणें सारे वन को रंग दिया था, जैसे प्रिया को प्रियतम गालों में गुलाल लगा देता है मुख में अभी, और उस समय कृष्ण को वो स्मरण हुआ कि उन गोपियों को जो हमारी पूजा की थी कात्यायनी देवी की, उनको वर दिया है, वो तो उनका मन पूरा करना पड़ेगा अभिलाषा, ये याद है। और उन्होंने बंसी में गोपियों को आवाज दी और गोपियां घर बार सब छोड़कर जो तवे पर रोटी रखी थी वो जल रही है चली आई, पति उनकी सेवा कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, जो दलिया बना रही थी वो चूल्हे पर रहा, जो बच्चों को दूध पिला रही थी वैसे ही छोड़ दिया। आजगमो अन्नो अन्न मलास्तोद्यम, सब कुछ छोड़ करके तन मन से कृष्ण के निकट गया। कृष्ण ने भी यही प्रश्न किया, आप महाभागा बड़ी भाग्य सौभाग्य हो, अब बतलाइए आप लोग मेरे लिए आई हैं, आप का क्या मन करें, कौन सी अभिलाषा पूर्ण करें, और ये बतलाइए आप लोग किस लिए आए थे, हम लोगों के लिए लौटना संभव नहीं, मन को देखने के लिए। आप बड़े निष्ठुर हो, आपके समान और कोई निष्ठुर, बुलाया बुला करके हम आए तो हमें तुम अपने चरणों से अलग कर रहे हो, आप तो अपने निगमों की बात को सत्य करें। निगम माने वेद, वेद ने कहा है यदि सब प्रकार से कोई उनकी शरण ले सर्वधर्मान प्रत्य तो उसको कभी नहीं छोड़ते, इसलिए आप उनकी अपनी बात को मान करके निगम की बात को मान करके हमें ग्रहण करें और जाने के लिए आदेश मत दें। हम ऐसा सुना है ब्राह्मणों के मुख से विद्वानों के मुख से जो आपके चरण कमल जो सूतियों के लिए भी अन्वेषणीय हैं उन खोजते खोजते थक जाते हैं, और आपके ऐसे चरण कमलों के निकट हम पहुंच आए हैं। तुलसी दान पदा वशिष्ठ, तुलसी आपके चरणों में निवेदित है, मैं अपने केशों से उनको ग्रहण करती हूँ, अपने सिर पर धारण करती हूँ, इसलिए अब आप देश मत दीजिए, आप कृपा करके हमें अपने पास ही रख लीजिए। किंतु कृष्ण ने कहा कि नहीं, घर में लौट जाना तुम्हारा धर्म है, पति लंगड़ा दूल्हा जैसा भी कोई हो, धन कमाता नहीं हो, सब प्रकार से काला कुंठा भी हो, दुर्वचन बोलने वाला हो, तो भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो नरक में गति होती है, इसलिए आप चले जाइए। गोपियों को भी यही बात कही, गोपियों ने उत्तर दिया यही, हम नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, जाना असंभव हम लोग का, जाकर के भी घर में लौट करके क्या करेंगे, हम तो पागल होकर के रहेंगे। इसलिए आप निष्ठुर होकर के ऐसा आदेश करो। आप शास्त्रों की वचन मानिए। क्या गोपियों ने थोड़ा सा और कहा, शास्त्रों ने कहा है सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उनकी अर्चन पूजन करना चाहिए। तो आप ऐसे सुंदर उपदेश दे रहे हैं जो पति के पास में जाओ उनकी सेवा करो, तो आप गुरु हमारे ठहरे, इसलिए गुरु की पूजा पहले होनी चाहिए, आप स्वीकार कीजिए, और नहीं तो आपको पाप लगेगा हम कह कर। कैसा सुंदर उत्तर दिया, इसलिए पाप आपको लगेगा हमें नहीं, और भी होगा क्या, हम यहाँ से लौट करके घर में जाएंगे, सभी मर जाएंगे आपके बिना। तो इतने कोटि कोटि गोपियों का मरने का पाप आपके सिर पर होगा, ऐसा भी समझो। कोटि कोटि पद स्त्री पद का पाप आपको लगेगा, इसलिए जाना हम लोगों के लिए। कृष्ण मुस्कुरा दिए, इनको तो वहां से हटा दिया चले गए, किंतु गोपियों को के वचनों से वो परास्त हो गए, और फिर वो जैसा चाहती थी उनको ग्रहण किया, फिर उनको नहीं लौटाया। ब्रह्मा की एक रात पर्यंत करोड़ों वर्षों तक चंद्र जहां था वहीं रह गया, और रास लीला उसमें समस्त लीलाएं उसकी। उन्होंने कहा हम घर में लौटेंगे भी, राम जगह पत्नियों वो इतनी चतुर नहीं थी जितना गोपियां चतुर। वो कृष्ण को भी शिक्षा देने में और पूरी तरह से योग्य है, इसलिए कृष्ण से वो कृष्ण को पराजित कर दिया, किंतु ये ब्राह्मणी शरण हृदय की नहीं कर सके। दूसरी बात एक है, कृष्ण बिना गोपियों के दूसरे किसी को ग्रहण नहीं कर, ब्राह्मणियों को माता समझते हैं, पूजनीय समझते हैं, इसलिए उनको कैसे ग्रहण करें पत्नी के रूप में, प्रियतमा के रूप में, यह संभव नहीं। अच्छी बात है, अभी लौट जाओ, कालांतर में सब कुछ समय के बाद में तुम लोग गोपी के घर में जन्म ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के बाद में गोपियों के अनुगत में तुम मेरी कथाओं को सुनेगी, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब तुम हमारी प्रेयसी के रूप में हमारे पास में आना, और तब फगाएंगे नहीं, अभी लौट जाओ। तो इसलिए दूसरा कोई भी साधन भजन करे, किंतु ब्रज की भक्ति यदि चाहता है तो ये बड़ी दुर्लभ है, और कृष्ण की सेवा सबसे अधिक कौन करेगा, सखाओं और माताओं की अपेक्षा ये गोपी है, अपना सर्वस्व सब कुछ उनके लिए न्योछावर है। ऐसा यशोदा मैया भी नहीं कर सकती, नंद बाबा को छोड़ देंगी नहीं छोड़ सकती, इसलिए गोपियां अपने पति पुत्र सबको छोड़ करके संपूर्ण रूप से आए, उसको ये कहते हैं प्रतिज्ञा है, उनको मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए गोपियों को तो भगा ना सके, किंतु इनको प्राकार दूसरे रूप में बताया, पहले गोपी रूप में भजन करो, और फिर भजन करके हमारे उनके अनुगत में मेरी सेवा चाहो। लक्ष्मी जी भी एक बार मुक्त हो गई, और उन बेल बन एक वृंदावन में है जमुना के उस पार, बहुत कठोर तपस्या की, कृष्ण ने कहा जी कैसे तपस्या की, तो मैं रास में सम्मिलित होना चाहती। अच्छा रास में, ये तो बड़ी दुर्लभ बात है, ब्रह्मा शंकर भी नहीं कर सकते, तुम सोच रहे हो। अच्छा एक बात कर, एक शर्त है, गोकुल में तुम्हारा जन्म होगा गोपी के घर में, और फिर किसी न किसी दूसरे गोपी से शादी तुम्हारी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद में तब फिर हमसे मिलना, गोपियों की सेवा और गोपियों की कृपा लाभ करके तब हमारे पास। ये मेरे लिए तो असंभव, मैं आपके अतिरिक्त दूसरे के पास में नहीं जा सकता, दूसरे गोपों से मैं शादी नहीं चाहती, वो तो सब शादी हमारी नारायण से हो गई है, तभी उनको छोड़ करके आ गए। इसलिए बिना गोपी बने कृष्ण का प्रजित का जो प्रेम है पार्थिव भाव, ये नहीं संभव है। इसलिए कहती हैं गृहनंद के नो न पता पितरों सुतो हुआ, घर में जाएंगी और पति लोग हमारे हमको नहीं ग्रहण करेंगे, आप तो घर से निकल करके आएंगे, पिता भी नहीं करेंगे, माता भी नहीं ग्रहण करेंगे, जब पति नहीं हटा दिया, और पुत्र भी नहीं, लड़की भी नहीं, भाई और बंधु सुहृद ये क्या हमारे हमको रख सकेंगे, ये लोग नहीं रख सकते। तस्मात् भवत् प्रपदयो पतितात्मना नो अन्य ग कति भवे कति अरिंदम तत्पिते। इसलिए हमारा आश्रय आप ही है, आपके आश्रय को छोड़कर के कहीं भी हमको कोई स्थान नहीं देगा, इसलिए हमारा एकांति का आश्रय आप है, आप हमें यहां से मत भगाए। यह इस प्रकार से कहा, यह भक्ति का लक्षण है। हाँ
सखिरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखिरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। आलिनी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन समझिए। सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे वर्णन कर पाऊं। कमर पीतांबर खिल मिल हो, नमुख से नमुख से वर्णन कर पाऊं। नमुख से मदन मोहन के गुण गाऊं। मदन सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो, मदन मोहन माला। गले में
बतावे वो तो हसस के बतावे वो
बरसानों में दुकान रे हंस के बतावे को तो बरसानों में दुकान हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में जो मेरी छोटी सी किशोरी मेरे ससुराल रे शर्मा के बोले मोसे नंदगांव ससुराल ओ पाँव में पायलिया बाके चम चमा चम बोले रे पाँव में छोटी सी किशोरी
time.
जी किशोरी मेरे हमे नाम तुम्हारे जय जय श्री राम।
जब उन लोगों ने यज्ञ पत्नियों ने ब्राह्मण की पत्नियों ने जब कृष्ण से बोला बाहर हम लोग घर में लौट करके किसके पास जाएं, हमारे पति हमारे पुत्र हमारे भाई बंधु कोई भी अब हमें घर में नहीं रखेंगे, अब तो घर से निकल करके ही आए। कृष्ण ने कहा मेरा आदेश मानो जाओ और तुम्हारे पति लोग तुम्हें अब परम आदर के साथ में घर में लेंगे, जितने बंधु बांधव हैं वे लोग तुम्हारा महत्व समझेंगे, तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, तुम चिंता मत करो। कृष्ण ने योग माया के द्वारा उनकी मति ऐसी की जो वो अपना संकल्प बदल करके फिर अपने अपने घरों में लौटी। सुखदेव उवाच, अब इसके बाद में सुखदेव जी उपसंहार कर रहे हैं श्री राम। इस प्रकार से पत्नियां वहां से लौट करके यज्ञ स्थली में गई और अपने पतियों से मिले, किंतु था ऐसे खाली, जितना भोजन इत्यादि था तो वो तो सब कृष्ण को निवेदन कर लिया, कृष्ण ने ग्रहण किया और परस्पर बांट करके खा करके तृप्त हो गए, तृप्तोष्मी। और इसके बाद में उनके पति लोग जो पहले बिगड़े हुए थे उनमें से एक ने अपनी पत्नी को मना कर मत जाओ, उन्होंने अब तो हमको जाना है, कोई रोक नहीं सकता, अब तो लज्जा को भी हमने छोड़ दिया। तो उसने उसको पकड़ करके और अपने घर में जबरदस्ती बंद करके शिकल चढ़ा दी, लठिया लेकर के बाहर में खड़ा हो गया, देखे कैसे जाती है। वो विरह में अपने शरीर को जला दिया अथवा विरह में अत्यंत दुखी होकर के वहीं पर मनी मन में देखा जी कृष्ण आ गए और उनको अपने हृदय में लेकर के आलिंगन पाश में बद्ध कर दिया और उसके सजाए हुए थाल को कृष्ण ने ग्रहण करके सबसे पहले उसी को भोजन किया और उसका मनोरथ पूर्ण कर दिया। मरी नहीं शरीर उनका जो है चिन्ह में, वो ब्रज में कैसे हुआ पाई छोड़ेगी शरीर, इसलिए अपने शुद्ध शरीर से गोपी भाव से कृष्ण को अंत में मिली और कृष्ण ने अंगीकार कर दिया, फिर उनको नहीं लौटा और लोगों को लौटा, किंतु उनके लिए प्राण का भी जो न्योछाप कर देता है कृष्ण कैसे उसका त्याग। इसलिए ये दिखलाया कि कृष्ण के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए, इतना उत्सर्ग होना चाहिए, प्राणों का बलिदान भी यदि कृष्ण के लिए करना पड़ा या सत्संग के लिए ऊंचे और यथार्थ सत्संग के लिए प्राणों का विसर्जन भी करना हो कोई बात नहीं, कृष्ण उसकी रक्षा करे। यदि ध्रुव प्रभात और सबकी रक्षा की तो हमारे हमें छोड़ देंगे, इस विश्वास को तो रखो। इसके बाद में भगवान ने उच्च चतुर्विध अन्न का भोजन किया, सखाओं को किया, तृप्त हो गए। अब जब घर में लौटी उनके पतियों ने बड़ा आदर किया, आगे बढ़ाए, यज्ञ को स्थापित करके आगे आए और बड़ा सम्मान के साथ में अपने घरों में ले गए। दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्ण भक्ति लौकिक आत्मानं च तया हीनम अनुतप्ता जगर है, हाय हाय हमारा जीवन बेकार आ गया। ये स्त्रियां को कितना, इन स्त्रियों को कितनी कृष्ण के प्रति अनुराग है आज हम लोग समझे, हमारे मना करने पर भी ये मानी नहीं और कही और उनको तृप्त कर दिया, हमारे जन्म को धिक्कार है। त्रिविध तीन प्रकार के जन्म होते हैं, पहला जन्म माता पिता से सौख्य जन्म होता है, दूसरा होता है उपनयन के समय पुरोहित गुरु उसको ये उपनयन दे करके दूसरा जन्म देता है, और तीसरा जन्म होता है गुरु देता है परमार्थिक जन्म मंत्र के माध्यम से। हम लोगों का तीनों जन्म है किंतु धिक्कार है ऐसे जन्म को, बहु बहु क्या था हम लोगों ने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का, संस्कृत का, व्याकरण का, सब बहुत योग्यता हम लोगों की है, किंतु किस काम की है? धिक्कार है, धिक्कुलम ब्राह्मण कुल को हमारा धिक्कार है जिसमें जन्म लिया। क्रिया दक्षण यज्ञ की विधि और शब्दों की विधि जो हम लोग जानते हैं वो सबको धिक्कार है। क्यों? कि हम लोग विमुख, राधा कृष्ण के विमुख, कंस के डर के मारे हम लोग नहीं जा सके और न उनको भिक्षा दी। मूल कारण था कंस बिगड़ जाएगा, कंस उनको पैसे दे करके खिलाने पिलाने का सामान दे करके और उनका पालन पोषण करता है, दुष्ट है। यदि सुन लिया कि ये गए कृष्ण के पास में, हमारे विरोधी के पास में, तो हमें मार डालेगा, हमारी जीविका बंद कर देगा, किसी नहीं जा सके। जिनको इस तरह का किसी प्रकार का भय है कि हम साधु संघ में जाएंगे, शुद्ध गुरु करेंगे, अतः कृष्ण का भजन करेंगे, तो हम तुमको छोड़ देंगे, हमारे पति भाई पुत्र सब छोड़ देंगे, हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? इस जिसको डर है ना, वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति कौन करेगा? जो निर्भय है, जानता है कि कृष्ण हमेशा विपत्तियों से रक्षा करेंगे, इसलिए उसको कहीं डर है, वो परम निर्भय है। ओहो, इन सबको हमारा धिक्कार है। नूनं भगवतो माया जोगी नाम, भगवान की ये माया है, जोगियों को भी मुक्त करने वाली है। और हम ब्राह्मण त्रिगुणों के अधीन, काम क्रोध लोभ मद मोह और सात्विक राजसिक तामसिक इन गुणों के अधीन हम माया के द्वारा मोहित हो गए। कृष्ण हमारे घर पर आए, भोजन मांगा, हम लोगों ने दूध काट करके उनको नहीं दिया, ओह हमारे लिए विकार। और ये गोपियां, ओह पश्चात नारी नाम अभी, ये नारियां हैं अपवित्र, इनको रहना पड़ता है 3 दिन 4 दिन के लिए, इसलिए गायत्री ब्रह्म गायत्री में इनका अधिकार नहीं है अपवित्र होने की वजह से। और विद्वान भी नहीं है, व्याकरण शास्त्र इत्यादि यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकती, उनके साथ में बैठेगी स्त्रिया नहीं करेगी, उनका आधा भाग ऐसे ही उनको मिल जाएगा। तो आज घर से निकल करके हमारे सामने चली गई और हम लोग नहीं जा सके, हमारे द्विजाति संस्कार को धिक्कार है। इनकी तो द्विजाति संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञ पवित भी नहीं हुई, स्कूल पाठशाला इत्यादि में भी नहीं गई और ना इन्होंने सत्संग बाहर में जाकर के किया, किंतु ये करती थी। वैसे जो लौटता था इन के घरों में कुंजड़ी, जो फल बेचने वाली दूसरे कृष्ण के संबंध में बतलाती थी, उसको सुनती थी, इसलिए इनका कृष्ण के प्रति अनुराग कर गया। तो न तो वो तप नहीं किया, आत्ममानसा शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी नहीं किया। न शौचम पवित्रता नहीं, न क्रिया शुभ, शुभ क्रिया भी इनकी नहीं। और तथापि उत्तम श्लोक जो भगवान है, जिसको वेद शास्त्र महिमा जिनका वर्णन करके अघाते नहीं, शंकर और शी और सहस्त्रानंद, ये लोग भी इनका महिमा नहीं कर सकते वर्णन। योगेश्वर है, ऐसे जो योगेश्वर कृष्ण है, इनमें की ऐसी दृढ़ भक्ति कैसे हो गई और हमारी नहीं हुई? नंग स्वार्थ हुआ, हम लोग स्वार्थी हैं, कंस के डर से नहीं गए, या कृष्ण अपनी वृत्ति रोक देगा, वृत्ति मैंने रुपए पैसे देना, भोजन देना, ये सब बंद कर देगा डर से नहीं गए। अन्यथा परिपूर्णतामस्य कैवल्य आशीषानंद, जो कैवल्य अर्थात ये मुक्ति देने वाले हैं, कैवल्य मुक्ति अथवा कैवल्य प्रेम, कृष्ण का प्रेम, अपना प्रेम देने वाले हैं, एकांतिक प्रेम वो ऐसे देने वाले हैं। और उनके पास आकर के हमारे घर के दरवाजे पर आए, मांगा भी, ये हमारी विडंबना है, हम नहीं दे सके। अतः देश का पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र जो अपना देवता यजमानस्य कृतम पथर्मस्य जन्म है, स एष भगवान साक्षात विष्णु योगेश्वरेश्वर जातु यदुश्लिष्ट्य श्रीणाम अपि मूढ़ा न विद्महे। हम लोग मूढ़ हैं, इतना होगा कि साक्षात जोगेश्वर कृष्ण और इनको तृप्त नहीं कर सके, थोड़ा सा मांगने के लिए आए, उनके सखाओं को हमने दुत्कार दिया। ओहो बन्य धन्य, ओ हम लोग तभी धन्य है, हमारा जन्म धन्य है। किस लिए? ऐसी स्त्रियां जिनको मिल गई, जिनको कृष्ण में भक्ति है, इसलिए हम धन्य है। तुम लोगों के लिए हम धन्य है, कृष्ण का प्रिय करे उनके प्रति, तुम लोगों के लिए तुम्हारी कृष्ण में इतनी भक्ति है। आज हमको आशा है कि हमारे ऊपर में भी कृपा होगी तुम लोगों के वजह से, तुम्हारा जन्म। इसलिए बहुत से लोग हैं जिनको पुरुषों को दंभ अभिमान होता अपने ज्ञान इत्यादि का, और जिनको दंभ अभिमान नहीं है वो स्त्रियां पढ़ी लिखी हो ना हो, कैसे भी हो, थोड़ा सा रसोई बनाया स्वादिष्ट और कृष्ण को भोग लगा दिया, बस सात खून उनके माथ है, उनके लिए कंसेशन है, पुरुषों के लिए कंसेशन नहीं। करो जब तप ये सब करो, और उनके लिए कुछ भी नहीं, बस कृष्ण को भोग लगा दो, घंटी बजा दो, बस कृष्ण आ जाएंगे। न तुभ्यम नमस्तुभ्यम भगवतो, ओ कृष्ण के लिए हमारा नमस्कार है। अकुंठ मेधसि, यहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, वे इंद्रियातीत भगवान है जिसके माया से हम आज मोहित हो गए हैं, उस कृष्ण के लिए हमारा पुनः पुनः नमस्कार है, और तुम लोगों के लिए भी हमारा पुनः पुनः नमस्कार। इस प्रकार से गए, फिर अपने घरों में लेकर के गए उनका आदर। इस प्रकार से ये भक्ति की महिमा है। आप लोग ऐसे समझ करके, बहुत से हमने बातें कही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे जाने के बाद में शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान हरिनाम कीजिए और कृष्ण संबंधी नाम कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। इस प्रकार से अपने जीवन को सुखी रखिए। इससे बढ़कर के अब अगले बार जब आएंगे तो गोपियों का वेणु भी और अन्य मधुर से भी मधुर, जिसको सुनने के लिए कृष्ण तरसते हैं, ऐसे लीलाओं का हम लोग वर्णन करें। आज यही तक हम अपना श्रीमद् भागवत का प्रवचन समाप्त करते हैं। कृष्ण प्रसन्न हो, सबसे राधा जी प्रसन्न हो, और राधा भक्ति देवी जो राधा का स्वरूप है प्रसन्न हो, और आप लोगों को कृष्ण भक्ति हो। ये फल किसका यही है। तो और इसके बाद में हम लोग, आप लोग सभी आकर के अपना घड़ा लिए जिसका जिसका है, और उसे तोड़ करके सभी को थोड़ा थोड़ा दे देना है, और ग्रंथ भागवत को एक बार परिक्रमा करके ला करके, और उनका लाइन से आकर के पुरुष एक तरफ से, स्त्रियां एक तरफ से, पुरुष लोग इधर से आएंगे ऐसे पूजा करके चले जाएंगे, स्त्रियां भी ऐसे आएंगी और इस तरह से बहुत जल्दी से इसको समाप्त करें। और हमारी तरफ से यदि कोई त्रुटि हो, कठोर वचन निकले हो, तो आप लोग प्रसन्न होकर के उसे को हृदय से निकाल देंगे और अधिक नहीं क्या। और एक बार जिन लोगों ने इस कथा का आयोजन किया, वो सब लोगों का तो नाम नहीं जानते हैं, दो चारों का नाम जानते हैं, हमारे चक्रवर्ती जी हैं, हमारे सुशील जी हैं, वो आपके पीछे पीछे वर्मा जी, अरुण जी हैं, उनकी पत्नी हैं, और वो कृष्णदास हैं, और सब लोग जो है आयोजक को, और इस हॉल घर को देने वाली इसकी मालकिनी जो है, इन सबको प्रभु से प्रार्थना है कि उनको शुद्ध भक्ति दे, और फिर आए तो ऐसा ही आयोजन।
Hare Krishna. So Gurudev mercifully gives some initiation yesterday and today. So I am requesting them to stand up. Gurudev will announce your new spiritual name. Manoj Sahi.